नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचाई से आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के अमेरिका स्थित मुख्यालय में मुलाकात की। दोनों ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर चर्चा की। वैष्णव ने मंगलवार को ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिचाई के साथ इंडिया स्टैक और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर चर्चा हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधिकरण ने केजी बेसिन में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी के क्षेत्रों से गैस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जाने के विवाद मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार ने ओएनजीसी के परिचालन वाले KG D5 ब्लॉक से निजी कंपनी के निकटवर्ती KG D6 क्षेत्र में जाने वाली गैस से गलत तरीके से एक की कीमत पर दूसरे को हुए लाभ को लेकर रिलायंस पर $1.55 अरब का अस्थायी जुर्माना लगाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके ब्रिटेन के भागीदार BP PLC से अतिरिक्त पेट्रोलियम लाभ को लेकर $17.5 करोड़ की मांग की गई थी। रिलायंस बीपी ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष जुर्माने को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने अपने क्षेत्र में काम किए और गलत तरीके से एक की कीमत पर दूसरे को लाभ का सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के तथ्यात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप की गुंजाइश नजर नहीं आती। तथ्यात्मक निष्कर्ष पूरी तरह से तर्कसंगत है। ये विवाद 2013 में सामने आया। वित्तीय संकट में घिरी एयरलाइन गोफर्स को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों ने नागर विमानन महानिदेशालय से 9 अन्य विमानों का पंजीकरण खत्म करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही अब तक कुल 45 विमानों का पंजीकरण खत्म करने और उन्हें वापस लेने की मांग DGCA के पास पिछले एक हफ्ते से आ चुकी है। DGCA की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक पट्टे पर विमान मुहैया कराने वाली कंपनियों ने गोफर्स्ट को दिए गए 9 अन्य विमानों की सूचीबद्धता खत्म करने का अनुरोध किया है। गत 2 मई को विमान परिचालन बंद करने की घोषणा करते समय गोफर्स्ट के बेड़े में कुल 55 विमान मौजूद थे। एयरलाइन ने इंजन की आपूर्ति नहीं होने से पैदा हुए वित्तीय संकट को जिम्मेदार बताते हुए अपनी उड़ानें 12 मई तक रोक दी हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष दिवाला समाधान प्रक्रिया की अर्जी भी लगाई है, जिस पर बुधवार को फैसला आने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उद्यम सहायता प्रमाण पत्र के साथ असंगठित सूक्ष्म उद्यम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज को लेकर सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में आएंगे। IME वो उद्यम हैं जो पैन या माल एवं सेवा कर पहचान संख्या जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे उद्यम सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों का लाभ लेने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा सरकार ने RBI को स्पष्ट किया है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत रिटर्न दाखिल करने से छूट वाले उद्यमों का कारोबार उद्यम सहायता मंच के मकसद के लिए IME के रूप में परिभाषित करने का एकमात्र मानदंड है। इसलिए IME वे उद्यम हैं जो माल और सेवा कर व्यवस्था में शामिल नहीं हैं। RBI ने परिपत्र में कहा कि सरकार ने साफ किया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज लाभ को लेकर उद्यम सहायता मंच पर IME को जारी प्रमाण पत्र को उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र के रूप में लिया जाए। परिपत्र में कहा गया है, उद्यम सहायता प्रमाण पत्र के साथ IME को MMME के तहत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज को लेकर सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय ने उद्यम सहायता मंच शुरू किया है। इसका मकसद IME को उद्यम सहायता प्रमाण पत्र ऑनलाइन सृजित करने की सुविधा देकर संगठित क्षेत्र का रूप देने में मदद करना है। मंच पर पंजीकरण मनोनीत एजेंसियों की सहायता से किया जा सकता है। ये एजेंसियां RBI के नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयां हैं। अपोलो टायर्स का मार्च में समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 3 गुना से अधिक होकर 427 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कच्चे माल के दाम घटने और लागत दक्ष उपायों से कंपनी के मुनाफे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इससे पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 113 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। अपोलो टायर्स ने बयान में ये जानकारी दी। तिमाही के दौरान कंपनी के परिचालन आय बढ़कर 6,247 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5,578 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में टायर कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ बढ़कर 1,105 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो 2021-22 में 639 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की परिचालन आय 20,948 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,568 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।